Om Shanti. Very, very good morning. तो आज सब यहाँ पे पहुंचे हैं. आज ये विशेष एक पैनल सेशन है डिस्कशन का, प्रश्न उत्तर. आपके प्रश्न आपके और उत्तर जवाब हमारे. आपका इस पैनल सेशन में सभी का बहुत स्वागत है. साथ साथ हमारे सामने हमारे वरिष्ठ दीदी और भाई बैठे हैं, आदरणीय रुक्मणी बहन जी, और हमारे साथ हैं आदरणीय भ्राता मृत्युंजय भाई और भ्राता आत्म प्रकाश भाई. दोनों ही बहुत सीनियर, हमारी दीदी बहुत सीनियर, सब वरिष्ठ बहुत अनुभवी हमारे सामने आत्माएं हैं जो हमारे प्रश्नों के उत्तर हमें देंगे. हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए बाबा ने तीनों को यहाँ पर बिठाया है. प्रश्नों की गठरी जब हम देख रहे थे तो बहुत सारे सवाल थे लोगों के मन में, और आप सबको पता ही होगा कि समय की हमारे पास सीमाएं हैं, तो हर एक के सवाल को हम जवाब तो देना चाहते हैं लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि एक एक प्रश्न का उत्तर दिया जाए. तो हमने उसको एक ब्रीफ में क्वेश्चंस का एक रिपोर्ट जैसा बना लिया है. तो वो क्वेश्चंस सभी के हैं, लगभग तो सभी के कॉमन ही क्वेश्चंस होते हैं. तो सब हाँ, पूरी उम्मीद हम यही रखेंगे, पूरा प्रयास करेंगे कि आप सबके सवालों के जवाब इन प्रश्नों में मिल ही जाएंगे. और कुछ कुछ क्वेश्चंस बहुत पर्सनल होते हैं तो वो सभा में बोलना और उसका सभा में उत्तर देना वो पॉसिबल नहीं है. वो अगर आप चाहें तो पर्सनली हमारे जो सीनियर्स हैं उनसे मिलकर के आप पूछ सकते हैं. ठीक है, तो हम शुरू करते हैं. जो प्रश्न हम बोलने वाले हैं इसमें हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं कि किसने ये सवाल किया है, सिर्फ एक क्वेश्चन है और सभी को ये सब यही मान करके चले कि ये हमारे ही सवाल का जवाब होगा. तो पहला प्रश्न है, हम आत्म प्रकाश भाई जी से पहला प्रश्न पूछना चाहते हैं. हमें यह निश्चय हुआ है कि परमात्मा आ चुके हैं, परंतु जब हम किसी को ज्ञान सुनाते हैं तो वह हमारा मजाक बनाते हैं. बहुत बार हमें निश्चय हो जाता है ना कि भाई बाबा तो आ चुके हैं, भगवान आ चुके हैं, लेकिन किसी को ज्ञान सुनाने की ताकत नहीं होती, शक्ति नहीं होती, तो उसमें क्या करते हैं फिर कोई दूसरे फिर मजाक भी बनाते, और इसीलिए हम किसी को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, फिर इससे हमारे अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है. तो इसका क्या उपाय है?
ओम शांति. देखिए, जब हम इस ज्ञान में आए थे आज से 62 वर्ष पहले, उस समय तो वीकेज बहुत बहुत कम थे और हमें ये ज्ञान मिला तो नशा चढ़ गया, निश्चय हो गया कि भगवान आ चुका है और ये सब ज्ञान दे रहा है. तो बाबा ने कहा, स्वयं हम जब बाबा से मिले आए, वैराग्यता हमें बहुत, बाबा ने कहा बच्चे बी पेशेंट, ये ज्ञान तुम अपने इंजीनियर्स को दो जो स्टूडेंट्स हैं, और साथ साथ अपने पेरेंट्स को भी दो. जो बाबा ने हम कहा वही किया, स्टूडेंट्स को ज्ञान देना शुरू किया. तो आप जैसे आप कह रहे हैं कि वो मजाक करते हैं, परंतु इतना नशा था, इतनी फोर्स था, उमंग उत्साह था. हम बताए हमारे पास एक कुंडली में त्रिमूर्ति मैगजीन निकलती थी, त्रिमूर्ति, अभी जो ना ज्ञान अमृत, जिसमें ज्ञान योग के थोड़े बहुत वो अनुभव के सारे आर्टिकल होते हैं. तब ये नहीं था, तब वो डायरेक्ट ज्ञान था, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं, गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, 84 लाख दुनिया नहीं, पूरा डायरेक्ट ज्ञान होता था. हम वो बस में ही बांट देते थे, लो पढ़ो आप सब लोग, हम फिर उतरते थे सबसे वापस लेते थे. वो प्रश्न करते थे तो हम उनको इतने उमंग उत्साह, इतना वो हमारा वो था एंथुजियाज्म था, तो वो कन्विंस हो जाते थे। हमारे स्टूडेंट्स कहते हाँ बात तो आपकी राइट है, वो कहते थे हम, वो कहते आप ये कैसे कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी नहीं, भाई एक ही मिसाल दी और वो कन्विंस हो जाते थे। तो मैं ये कहता हूं जब हम समझाते हैं किसी को, पहले तो हम खुद उमंग उत्साह में हो, उसी उतने एंथुजियाज्म में हो और वो निश्चय से हम समझाएंगे तो वो आधा तो वो पहले समझ जाता है भी ये इसको क्या मिला हुआ है जो कितने खुशी से प्यार से हमें समझा रहा है। तो पहले तो हम खुद अपने में कन्विंस हो और अगर हम फिर उसको उसी उमंग उत्साह से और उतने निश्चय से समझाएंगे तो कन्विंस हो जाएगा। मजाक हो सकता है पहले कुछ मजाक करे, लेकिन फिर आपके जीवन को देख करके इसमें इतना परिवर्तन आ गया है, फिर उन हमारे स्टूडेंट्स ने परिवर्तन देखा तो वो बहुत वो भी बदले, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स ज्ञान में आ गए। इसी प्रकार से अगर हमारा मजाक तो होता है थोड़ा बहुत शुरू में करते हैं, लेकिन हमारे जीवन को देख करके ज्ञान की पॉइंट्स को देख करके और हम जब उनको समय की पहचान देते हैं कि अब समय कौन सा आप होता है उसको देख करके तो वो कन्विंस हो ही जाते हैं। हाँ जो अब बाबा ने ये भी एक बात कही है कि ये जो अपने होंगे इस घराने के जो ज्ञान में चलने वाले होंगे जो अपने घराने के हैं वो ही इस ज्ञान को पूरा समझेंगे, ये भी आप निश्चय कर लीजिए। परंतु हमारा फर्ज ये बनता है जो भी मिले उसको ये ज्ञान का परिचय किसी ना किसी रूप में देना जरूर है। उस वक्त हमारे पास कोई साधन भी नहीं थे, ना कोई किताब थी, ना कोई चित्र थे, ना कुछ था, तो हम तो जबानी ज्ञान देते थे। अब तो इतने साधन है, किसी को पुस्तक दे दो, किसी को शिव संदेश दे दो, किसी को कुछ दे दो, तो आप कोई संदेश देना और उनको कन्विंस करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब इतनी पहले कितने हमारे सारे इंडिया में 2-3 हजार मुश्किल से थे, आप तो 10-20 लाख हमारे इतना काफिला चल रहा है, इतने काफले को देख करके भी वो कहते हैं हाँ कुछ तो होगा यहाँ पर इतना कुछ है। इसलिए अभी मैं समझता हूँ मजाक करने का बात तो टाइम तो गया, आप तो लोग कहते हैं हमें ज्ञान सुनाओ, आपके पास क्या आपको मिला है ज्ञान सुनाइए बताइए हमें। अब मैं समझता हूँ मजाक नहीं करते होंगे, परंतु अगर करते भी है तो कोई वो थोड़े आपके जीवन को देख करके ज्ञान को सुन करके वो ठीक हो जाएंगे। आप अपना काम करते रहिए, लोगों को सुनाते रहिए और संदेश देते रहिए बाबा जैसे कहते हैं। मैं अपने अनुभव से कहता हूँ कि हमें जो मिला सबको ज्ञान दिया, हमारे स्टूडेंट्स भी ज्ञान में आ गए, लोग फैमिली को ज्ञान दिया वो भी ज्ञान में आ गए, पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में आ गया अपने निश्चय के बल से और अपने जीवन के परिवर्तन के बल से। ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है, मेरा विचार तो यही है। ओम शांति।
बहुत सही भ्राता जी ने बात बताई, अगर आपका नशा पूरा है तो फिर
कोई आपका एक बात ऐड कर देता हूँ, ज्ञान सुनाने वाले में वो सुने ना सुने आपके अंदर चिड़चिड़ापन नहीं आना चाहिए, आपको गुस्सा नहीं है, वो गुस्सा आएंगे तो हमारा ज्ञान सारा अधूरा हो जाए। ओके,
बिल्कुल सही बात है, हमारी स्थिति नहीं खराब होनी चाहिए, है ना। किसी अभी अगला प्रश्न हम मृत्युंजय भाई से ही पूछने वाले हैं। कुछ भाई बहनों के ये सवाल है, क्योंकि आप सबको पता ही होगा आदरणीय रुक्मणी दीदी ट्रांस में जाते हैं, बाबा का संदेश लेके आते हैं, सबको पता है, किस किस को पता है, तो ये सवाल दीदी से पूछते हैं। दीदी, कुछ भाई बहने पूछते हैं कि सूक्ष्म शरीर क्या होता है और मरने के बाद आत्मा सूक्ष्म शरीर धारण करती है तो वो किसी को नुकसान भी पहुंचा सकती है या नहीं। बहुत भाई बहन पूछ रहे हैं, हमको प्रेत आत्मा कभी परेशान करती है, इस तरीके से काफी लोगों के क्वेश्चंस आए हैं। और ब्रह्मा बाबा भी सूक्ष्म शरीर के माध्यम से कैसे कार्य करते हैं।
ओम शांति। बहुत अच्छा प्रश्न है, समय के अनुसार, क्योंकि आजकल हम विशेष रूप से देखते हैं कि कई बाबा के बच्चे भोग के कारण भी आते हैं, कई प्रश्न इस प्रकार से पूछते हैं। तो पहले तो कहेंगे कि भूत और प्रेत आत्माएं, इनके ऊपर वार करती हैं जो कमजोर आत्माएं होती हैं, जिनकी शारीरिक शक्ति कमजोर और मन कमजोर होता है, स्थिति कमजोर होती है, तभी हमारे ऊपर दूसरी आत्माओं का अटैक और उनका प्रकोप होता है। इसलिए हम बाबा के बच्चों को इन बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि विश्वास करके चलते हैं तो इसमें हमारी अपनी कमी कमजोरी होती है। कई बार देखते हैं कि इन आत्माओं का प्रवेश या किसी के ऊपर वार करती हैं, तो कोई ना कोई गलतियां, कोई ना कोई भूल हम करते हैं, जिसका मैं थोड़ा सा एक दो शब्द में बता रही हूँ। कई बार कई जगह गंदगी होती है, कुछ किचड़ा पड़ा होता है, वहां पर हम कभी बाथरूम टॉयलेट कर लेते हैं। अब कैसी कैसी आत्माएं होती हैं, कोई किसको मार देता है, कोई किसको जला देता है, तो उस स्थान पर कभी कभी आत्माएं सूक्ष्म में वास कर लेती हैं, और वो आत्मा एकदम गिरी हुई आत्माएं होती, पतित आत्माएं होती हैं। तो उस कमजोर आत्मा जब हम होते हैं तो एक तो उस कारण हमारे ऊपर उसका वार हो जाता है, पर फिर भी हम बाबा के बच्चों को अपने अंदर इतनी शक्ति भर के चलना है, इतना शक्तिशाली बन के चलना है, जो कोई भी आत्मा, किसी प्रकार की भी आत्मा हमारे ऊपर वार ना करे। इसलिए कभी कभी ये बातें हम देखते हैं, आजकल समय अनुसार बहुत इन बातों का प्रकोप हो रहा है, पर उसको भगाने के लिए हमें अपने आप में बहुत निश्चय बुद्धि और बहुत पावरफुल बनने की जरूरत है। जो वर्तमान अभी एकदम कलयुग का लास्ट है, और दूसरा कहें ब्रह्मा बाबा का सूक्ष्म शरीर, हम जब वतन में जाते हैं तो बाबा को तो 50 साल हो गए, और बाबा का ये कार्य सूक्ष्म रीति से बाबा ने अवित होने के बाद इतना इस कार्य को, बाबा के स्थापना के कार्य को इतना आगे बढ़ाया है, क्योंकि हमने तो 1958 से ज्ञान लिया और उस समय इतना ज्ञान नहीं था, पर जितना बाबा के अवित होने के बाद सूक्ष्म शरीर धारण बाबा ने किया, और जो हमें बाबा सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म शरीर के द्वारा बातें करते हैं, और कभी भी आज तक ऐसा मेरे को एक बार किसी ने प्रश्न भी किया, बाबा का सूक्ष्म शरीर से डर लगता है, तो हमने कहा हमको तो आज तक कभी भी 40 साल से ऊपर हो गए ट्रांस के पार्ट के लिए, तो कभी भी बाबा के सूक्ष्म शरीर के द्वारा सूक्ष्म वतन में बाबा को देखा, कभी भी बाबा का रूप से कभी डर भय का कभी भी ऐसा कहें कोई सपन में भी ख्याल में भी नहीं आया। तो हम देखते हैं सूक्ष्म शरीर वह है जो एक तरह से कहें कि कभी कभी हम सपन में भी किसी को देखते हैं, वो तो नींद में सोते हुए, पर ट्रांस में जब बाबा को सूक्ष्म शरीर में देखते हैं और उनसे बातें करते हैं, तो जिस प्रकार नींद में हम बात करते वो बात हमें भूल जाती है, पर ये तो बैठे जागते बाबा को देखते हैं, बाबा से बातें करते हैं, तो उस दृश्य को, सूक्ष्म शरीर को देखते हमें भी बहुत शक्तिशाली बाबा के वाइब्रेशन मिलते हैं साकार सृष्टि में, तो इसलिए बाबा के सूक्ष्म शरीर से बाबा अपने बच्चों को बहुत अच्छा अच्छा, हम तो देखते इतना अच्छा अनुभव कराते हैं। बाबा के सूक्ष्म शरीर द्वारा अनेक सेवाएं हो रही हैं, तो इसलिए भूत प्रेत वो अपनी कमी कमजोरी के कारण हमारे ऊपर वार होता है, और ब्रह्मा बाबा का सूक्ष्म शरीर के द्वारा जो सेवाएं बाबा कर रहे हैं, बाबा सेवा करा रहे बच्चों के द्वारा, वह भी इस समय संगम पर हम बाबा के माध्यम से बाबा की सेवाओं को देख रहे हैं। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा के सूक्ष्म शरीर का अनुभव हमें करना है, डरने की तो इसमें कोई बात ही नहीं है ना? बाबा शिव परमात्मा को हम अब कैसे अनुभव कर सकते हैं ब्रह्मा बाबा के थ्रू ही, तो डरने की तो कोई बात ही नहीं। अगला प्रश्न हमारा आदरणीय मृत्युंजय भाई जी से है। कुछ भाई बहन ये पूछ रहे हैं भाई साहब कि हमारे पास धन है और हम धन लगाना चाहते हैं बाबा के घर में, लेकिन बाबा मुरलियों में कहते हैं अभी समय बिल्कुल भी नहीं बचा है, और सेंटर पे जो बहने हैं वो भी कहते हैं कि अभी देखते हैं, तो हम भवन निर्माण कराना चाहते हैं और संकल्प भी उठता है, लेकिन फिर जैसे बाबा की मुरली चलती है कि विनाश तो सामने खड़ा है, तो ये भवन बना करके क्या फायदा है, तो ये सब तो गिरने ही वाला है, सब तहस नहस हो जाएगा, तो इसीलिए क्या ये ठीक है कि हम भवन निर्माण कराएं या ना कराएं, धन को कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं?
ओम शांति। सबसे पहले आपका संकल्प है सेवा करने का, भवन बनाने का, जो भी ईश्वरी जो वो संकल्प किसकी सेवा करने के लिए है? बाबा की सेवा करने के लिए। अपने घर बना करके बसने के लिए नहीं किया, परंतु बाबा की सेवा के लिए संकल्प किया। जो आपने जिस समय में संकल्प किया उसी समय बाबा ने आपका मीटर को, आपका भाग्य को बढ़ाना शुरू कर दिया, परंतु आपको संकल्प करके विनाश को देख करके वापस ले लिया, आपको रोका दिया, आपका संकल्प को रोक दिया। आप खुद भी विनाश होने वाला है, शरीर छोड़ने वाला है, आपका पैसा भी विनाश होने वाला है, आपकी प्रॉपर्टी भी विनाश होने वाला है। बाबा का भवन बना करके कुछ सेवा करके विनाश हो जाए तो कोई अर्जा नहीं, आपका भाग्य तो बन गया, भाग्य तो बाबा बनाने वाला है ना, बना दिया ना, आप तो बाबा के नाम से किया तो आपका भाग्य बन गया, आपको जो देना है बाबा देने वाला है, इसके लिए उसको पीछे हटना नहीं चाहिए। और दूसरा, विनाश तो अपने स्थान पर रहा है, विनाश होगा तो सारी दुनिया विनाश होगा, खुद भी शरीर छोड़ेगा, दुनिया भी छोड़ेगा, और इसके लिए उस बात के कारण संकल्प करे भाग्य बनेगा ना बनेगा ऐसा सोचने की जरूरत। भाग्य आपने बाबा को दे दिया, माना बाबा आपको मल्टी 1000 times को, 100 times को, जो भी है बाबा आपको देना है वो दे देगा। इसके लिए वापस संकल्प, वापस आना माना व्यर्थ संकल्प हो गया, उसमें डाउट हो गया, आपके भाग्य में भी डाउट हो गया, बाबा से भी डाउट हो गया, सेवा में भी डाउट, जहाँ डाउट होगा उसका धन सफल नहीं होता। ओके, शॉर्ट में
देखिए, बाबा की मुरली में आया था, बाबा ने खुद ही कहा कि जब मेरे में शिव बाबा ने प्रवेशता की, मैंने अपना पूरा तन मन धन जन बिजनेस सब कुछ इस स्वाहा कर दिया, देखा नहीं मैंने कुछ आगे क्या होगा। फिर बाबा ने अपने से पूछा, मैंने ऐसा क्यों किया? बाबा ने खुद उत्तर दिया कि मैंने इसलिए किया कि मुझे अंत में कुछ भी याद ना आए सिवाय शिव बाबा की। इसीलिए अगर हम कुछ तन मन धन स्वाहा करते हैं, अपने लिए करते हैं, ताकि हमें कुछ भी, हरे को शीर तो छोड़ना ही है, जाना है, तो इसलिए अंत में सिवाय बाबा के कुछ भी याद ना आए, इसलिए हम ये चीज बाबा के यज्ञ में लगाते हैं। और यही अगर अपने घर में रहते हुए भी ये समझे कि यह मेरा नहीं परंतु ये बाबा का है, उसका है, मेरा नहीं। ओम शांति।
अगला प्रश्न हमारा भ्राता जी आपसे ही है। कुछ भाई बहने कहते हैं कि जितनी हम मेहनत करते हैं उनके उसके अनुरूप परिणाम नहीं निकलता है। जितनी हम आध्यात्मिक मार्ग पर मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उसके अनुरूप परिणाम नहीं निकलता है। फिर हम अपने भाग्य को कोसने लगते हैं कि क्या मेरा भाग्य ऐसा है, तो मेरा भविष्य कैसा होगा, तो उसमें संशय पैदा होता है। तो भाग्य को किस प्रकार से बदला जा सकता है?
देखिए, अभी थोड़े दिन मुरली में आया था कि भाग्य भी है और पुरुषार्थ भी है, परंतु फिर भी पुरुषार्थ से ही भाग्य बनता है, ये बता दें। बाबा ने खुद ही कहा बाहरे का भाग्य भी होता है और पुरुषार्थ भी करना पड़ता है, परंतु फिर भी हम पुरुषार्थ को बड़ा रखेंगे कि पुरुषार्थ से ही भाग्य बनता है और कभी दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। गो ऑन डूइंग एंड डूइंग एंड डूइंग, करते चलो करते चलो करते चलो, कभी ये आपका किया हुआ पुरुषार्थ रहेगा नहीं जाएगा, वेस्ट नहीं जाएगा। क्या है, हमें जन्म जन्मांतर के कई प्रकार के कार्य किए हुए हैं, कुछ ऐसे कर्म किए हुए हैं कि को जो बहुत जल्दी उसका हमको रिजल्ट मालूम नहीं पड़ता, तो कोई बात नहीं, परंतु हम पुरुषार्थ करते चले, अपने को ढीला ना छोड़े। जो बाबा की श्रीमत मिली है, जो रोज मुरली सुनना, योग लगाना, बाबा कई कहते हैं हम याद में बैठे याद का पूरा हमें रिजल्ट नहीं मिलता है, कोई बात नहीं, गो ऑन डूइंग, करते रहिए, बाबा हमारा वो मेहरबान है, वो अवश्य हमारी बुद्धि को खींचेगा, अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होगी और हमको अनुभव भी होंगे। हम बैठते आकर योग में थोड़ा कि हर वक्त हमारा योग लगा ही रहता है, बैठते हैं सुबह शाम बैठते हैं, कभी होता है कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है, लेकिन जो अपनी दिनचर्या है, जो पुरुषार्थ है, जो बाबा ने नियम बताए हुए हैं, उसको हमको कभी भी छोड़ना नहीं, उसमें अपने को पक्का करना है। मुरली सुनना, योग करना, क्लास में आना, शाम को योग करना, कभी भी अटेंशन देना, और सारे दिन में अगर हम पुरुषार्थ करते रहते हैं जो बाबा ने कहा है, चलते फिरते खाते पीते स्वयं स्वचिंतन और शुभ चिंतन करते रहेंगे, तो उसका रिजल्ट हमें सायं के योग में भी और सुबह के योग में भी रिजल्ट मिलता है और हमें अनुभूति होगी, अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति होगी, उससे खुशी होगी और हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसमें दिल शिकस्त होने की बात नहीं, गो ऑन डूइंग एंड डूइंग एंड डूइंग, मेरा विचार तो ऐसा है। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी। अब एक ऐसा प्रश्न है जो बहुत से यहाँ युगलों का है, युगल भाई बहन बैठे हैं तो कुछ कहते हैं कि हमारी पत्नी सहयोगी है, पत्नी सहयोगी नहीं है, कुछ कहते हैं हमारे पति सहयोगी नहीं है, ये सारी बात पवित्रता पे आके अटकती है। तो पवित्रता को लेकर के बहुत लोगों के प्रश्न आए हैं हमारे पास। तो कुछ लोग कहते हैं कि पवित्रता की धारणा हम करें तो हमारे जो युगल हैं वो हमको कहते हैं हम आपको छोड़ देंगे, दूसरी शादी कर लेंगे, नहीं तो बाहर किसी और के साथ संबंध बना लेंगे। तो हमें पूरे दिन ये डर लगा रहता है, चिंता लगी रहती है कि हम क्या करें, हम ज्ञान में पूर्ण रीति चल भी नहीं पाते हैं, तो ऐसे में हम अपनी समस्या किसको बताएं, तो इसका क्या उपाय है, क्या साधन है? आदरणीय रुक्मणी दीदी इसके पता है।
ओम शांति। बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ज्ञान की मंजिल पर दोनों युगल मूरत चलते हैं तो गाड़ी बहुत अच्छी रीति से चलती है। यदि एक पहिया थोड़ा भी लड़खड़ाता है तो दूसरे पहिये को डिस्टर्बेंस होती है ज्ञान की मंजिल पर चलने के लिए। पर हम आपको बताएं, क्योंकि हम लोगों ने भी बहुतों के जीवन के अनुभव देखे हैं और किए हैं, माना सुनाते थे सामने से, एक बार कलकत्ते की बात है, क्योंकि हम 50 साल कलकत्ते में रहे, अभी मधुबन में रहते हैं 14 साल से। तो आज से 40 साल 45 साल पहले की बात है, एक भाई बहुत अच्छे ज्ञान योग में निश्चय बुद्धि बाबा के बच्चे थे, और भाई साकार बाबा से मिले थे। अच्छी फैमिली, रिच फैमिली थी, तो उनकी जो युगल थी वो थोड़ा ज्ञान में कम इंटरेस्ट लेती। उस समय उनकी उम्र भी, मैं समझती 25-30 साल की उम्र होगी। तो मैं जहाँ युगल चलते हैं, एक चलता एक नहीं चलता, तो थोड़ा पवित्रता पर झगड़े होते हैं। तो एक बार क्या हुआ, उनकी जो युगल थी उन्होंने अपने पति को कहा, जो भाई ज्ञान में चलते थे, बोला कि आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं गंगा में डूबने जाती हूँ। तो भाई तो बहुत निश्चय बुद्धि थे, उन्होंने बोला कि जाना तो भले जाओ, पर हम देखते हैं इस ज्ञान मार्ग में हमारे निश्चय की बहुत परीक्षाएं पेपर आती हैं। पर हमने उस समय, क्योंकि वो परदादी के बहुत नजदीक थे, तो हम लोग कई बार बात सुनते थे, तो ऐसे करके वो गुस्से में गंगा की तरफ गई और भाई वो योग में बैठ गया बाबा के घर सेंटर पर। और वो फिर थोड़े समय के बाद, आधा घंटा 15-20 मिनट में वापस आ गई, और वो उसको खुद छोड़ के आया, बोला सामने गंगा तुम जाओ, और खुद बाबा के घर में आके योग में बैठ गया। और फिर वो वापस आई, उसने किसी को, नौकर को भेजा, ड्राइवर को, कि तुम देखना ये कहाँ जाती क्या करती है। तो फिर देखा वो तो 10-15 मिनट खड़ी होके वापस आने लगी। तो उस समय उन भाई ने क्लास में अनुभव सुनाया था कि किस प्रकार माताएं बहने माना परीक्षा का कारण बन जाती हैं, पर मेरा बाबा से बहुत अटूट प्यार होने के कारण बाबा भी हम बच्चों की परीक्षा भेजता है, पर बाबा ही पास करता है। भगवान भी देखता मेरा कितना निश्चय है इस ज्ञान में और बाबा से निश्चय। तो जब हम इस ज्ञान मंजिल पर चलते हैं दोनों गाड़ी के पहिए, तो उतराव चढ़ाव बातें तो बहुत आती हैं, पर हम बाबा के बच्चे यदि निश्चय बुद्धि होकर के चलते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, और ये भी हमारे मन की स्थिति को टटोलते हैं, कितना इनके अंदर ज्ञान है, कितना योग है, कितना निश्चय बुद्धि है। यदि हम बाबा पर, हमारे को पूरा फेथ है, विश्वास है, निश्चय है, तो बाबा तो परीक्षा लेंगे, पर पास भी बाबा करता है। इसलिए हम बाबा के बच्चों को, युगल मूरत को, इतनी अपनी स्थिति को कमजोर नहीं बनाना है, अपनी स्थिति को इतना पावरफुल बनाना है, क्योंकि हमने बाबा का हाथ पकड़ा है, ज्ञान बाबा का है, इस ज्ञान की मंजिल पर चल रहे हैं। तो हम सभी को, युगल मूरत जो भी है, उनको इतना ज्ञान में और बाबा में, बाबा की हर बात में निश्चय होगा, तो कैसी भी बातें आएंगी उसका हम सामना कर लेंगे। इसलिए हम तो कहेंगे कि इस ज्ञान में चलने के लिए सबसे पहले बाबा से बहुत जिगरी प्यार होवे, और बहुत ज्ञान में निश्चय, बाबा में निश्चय, तो नैया तो हमारी हिलेगी पर कभी भी डूबेगी नहीं, पार लग जाएगी। ठीक है, ओम शांति।
इस बात का अनुभव मैंने खुद भी किया है, क्योंकि हम लोग बचपन से ज्ञान में है, और जब हमारी माता जी ज्ञान में चले तो हमारे घर में बहुत पवित्रता को लेकर के बहुत परीक्षाएं आई। कम से कम 15 साल तक हमने अपने घर में इतनी विकराल स्थिति देखी है, घर में रोज पुलिस आती है और रोज झगड़े होते हैं, पता नहीं सामान उठा उठा करके बाहर फेंका जाता था, क्या क्या नहीं देखा हमने। लेकिन हमने देखा हमारी माता जी तक से मस्त नहीं हुई, एक बार भी हिले नहीं अपनी धारणा से। तो उसका नतीजा आज भी हम देखते हैं कि आज हमारे पिताजी उनसे कहीं ज्यादा सेवा करते हैं। आज वो समझ चुके हैं और इतना अच्छे से ज्ञान में चलते हैं अभी, और डेली मुरली सुनते हैं, डेली इतनी सेवाएं करते हैं। तो बाबा हमारी सबकी, अब पूरा घर इतना खुशहाल हो चुका है। तो बाबा बिगड़ी को बनाने के लिए आया है ना, तो बिगड़ी स्थिति को, बिगड़े लोगों को सुधारने के लिए थोड़ी सी परीक्षा, थोड़ा सा सहन हमें करना पड़ता है। बड़े थोड़े लंबे समय के लिए हो, लेकिन उसका नतीजा आगे बहुत अच्छा निकल के आता है। तो आपका घर धीरे धीरे करके स्वर्ग अपने आप बन ही जाएगा, क्योंकि ये काम ईश्वर का है, स्वयं ईश्वर ये काम कर रहा है। इसलिए हमें बाबा पे कभी संशय नहीं लाना, पूर्ण निश्चय से बाबा का हाथ पकड़ना है ना। तो ये सवाल ही बिल्कुल छोटा पड़ जाएगा, है ना, पवित्रता की बात का। दूसरा सवाल मैं आदरणीय मृत्युंजय भाई जी से कहना पूछना चाहती हूँ। कुछ भाई बहने जैसे जॉब पे जाते हैं, वर्क प्लेस पे, तो वो कहते हैं कि जैसे बाबा कहते हैं कि सत्यता की राह पर चलना है, परंतु अपने सामने कुछ गलत होते हुए देखते हैं तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और लोग अपने फायदे के लिए और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए झूठ बोलते हैं, तो ऐसे में हम उनका सामना करें या चुपचाप उनको बर्दाश्त करते रहे, तो हम क्या करें?
ये प्रश्न बहुत सहज बात है। हम तो थोड़ा बुद्धिवान बनना चाहिए, विवेकवान बनना चाहिए, ज्ञान के साथ साथ। ज्ञान तो बहुत बड़े विस्तार की बात है, और ज्ञान है इसके लिए हम पत्थर को सिर ठोक नहीं सकते। ठोकेंगे, ऐसी पत्थर बुद्धि वाले भी दुनिया में होते हैं, और उनका अपना विचार है, अपनी बात। इसके लिए हम चुप रहना अच्छा है, और उसको गलत करेंगे तो कर्म सिद्धांत ये है, वो अपने आप एक दिन भोगेगा। इसके लिए हम डंगूरा बिठाने के लिए हम क्यों निमित्त बने? गलत काम करेगा तो करें, उसका नतीजा अपने आप को अनुभव करेगा। परंतु हम ब्रह्म कुमार बन करके इसका डंगूरा पिटाने का काम हम नहीं करें, और उससे दुश्मन भी बनेगा, द्वेष भी होगा और नफरत भी हो जाएगा। आपका अच्छा भावना नहीं रह सकता। आप अच्छी भावना रखो आज, नहीं तो कल वो सुधर जाएगा, क्योंकि उनके अपनी संस्कार, अपनी आदत है, अपनी परिसर है, अपनी सिद्धांतों पर चलता है, इसी कारण से ये बातें होती है। परंतु ये थोड़ा टेम्पररी है। जो मैंने देखा, गलत काम करने वाला का सदा दिल छोटा है, डरपोक है। वो आपसे भी डर रहेगा, अपने कर्मों से भी डर रहेगा, दूसरों से भी डरपोक कहीं ना कहीं फंस जाएगा। हिम्मत वाला कभी फंसेगा नहीं है, डरपोक फंसेगा, क्योंकि गलत काम अंदर ही डर को पैदा करता है और बढ़ाता है, और बढ़ाता है तो एक दिन फंस जाएगा। इसके लिए हमको ज्यादा इसमें फिक्र नहीं करना चाहिए। अनलेस समझो मिलिट्री में है, मिलिट्री में बाबा कहते हैं आपको गोली भी चलाना है, परंतु आप मिलिट्री में ज्वाइन किया तो आपका फर्ज बनता है गोली चलाना। इसके लिए बाबा ने कहा था, बाबा को याद करके करो याद में। परंतु ड्रामा अनुसार मैंने बहुत लोगों की, मिलिट्री में रहने वाले भाई बहनों का अनुभव सुना, भले गोली चलाया, देश के प्रति गोली चलाया, अपने ड्यूटी के निभाने के लिए ड्यूटी गोली चलाया, वह अपने ऑफिसर्स की आज्ञा को, परिस्थिति को देखते हुए गोली चलाया, उनको 100% सफलता मिली, सक्सेस मिली, यशस मिली और मेडल मिली है। ओके, इसके लिए इसमें
आत्म प्रकाश भाई जी से ये प्रश्न करना चाहती हैं। जब कोई मुझे डांट देता है तो मुझे रोना आता है, और किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती। जब कोई मुझे डांट देता है, रोना आता है, किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती, तो ऐसे में क्या करें? या फिर जैसे कभी कोई धोखा दे देता है, कोई किसी से बनती नहीं है, गुस्सा आता है, तो क्या मैं कमजोर वृत्ति की हूँ? तो ऐसे प्रश्न अपने आप से अंदर में निकलते हैं, तो अपने प्रति एक हीन भावना पैदा हो जाती है, और दृढ़ संकल्प जो हम करते हैं, दृढ़ संकल्प नहीं बैठ पाता है मन में, संकल्प पूरे नहीं हो पाते हैं। तो अपने प्रति ये हीन भावना को हम कैसे खत्म करें?
देखिए, पहले तो हम देखें हम कौन है, विचार करें इस पर। हम सारे कल्प में बाबा कहता है ये ब्राह्मण आप बच्चे हो, देवताओं से भी श्रेष्ठ हो, ऊंचे हो। हम श्रेष्ठ नहीं, हमने ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण श्रेष्ठ ऊंचे थे ऊंचे है, तो हमें कभी ये हीन भावना तो हो ही नहीं, कभी नहीं। वो हीन भावना तब आती है जब कोई असफलता मिल जाए या किसी से कोई हमें कुछ कह दे, कोई जैसे कुछ लगा दे तो हम उसको हमें लग जाए, फिर हमें फीलिंग आ जाए, फ्लू आ जाए, तो ये उस फिर हम उसको सोचते रहे कि उसने ऐसा क्यों कहा, कैसे कहा, ऐसे कहा, तो वो हम और डीप में डिप्रेशन में चले जाएं, हीन भावना आ जाए, हम तो कुछ नहीं है। परंतु इस हीन भावना से बाहर निकलना चाहिए। जो बाबा ने इतने स्वमान दिए, कितने स्वमान दिए आप देखिए, इतने स्वमान दिए, उन स्वमानों को याद कर करके अपने को ऊपर उभारना चाहिए कि ना के हीन भावना में जाए। और हमारे पास साधन है मुरली, हम बताए आपको, मुरली जेब में हो या कैसी भी आप मुरली का डायरी हो कुछ हो, जब भी ऐसी कोई बात आए तो आप उस मुरली को पकड़ लो, उसको पढ़ना शुरू कर दो। या हमारे पास अव्यक्त वाणियां हैं और साधन बहुत सारे हैं, जिससे कि हमारी उन चीजों को देख करके, उनको सुन करके, अभ्यास करके हमारी हीन भावना खत्म हो जाएगी। और ये जिद करें या हम किसी से टकराव में है, कहते नहीं, ना टकराना है, ना घबराना है, ना अपने को नीचे झुकाना है, हम तो एक बाबा के बच्चे हैं और ये समय हम अपना वेस्ट नहीं करना, क्योंकि ये समय बहुत बड़ा, बहुत कीमती है। इस एक एक बाबा कहते हैं एक एक सेकंड जो है कल्प में आपका कितना प्रारब्ध बना सकता है, उस समय को जाया ना करें और हीन भावना में ना है, ना किसी से उलझे भी नहीं हम किससे, अपना किनारा करके अपने पुरुषार्थ में लगे रहे, सबसे अच्छी बात तो ये है। तो हम तो देखते हैं हमारे 60 साल के पुरुषार्थ में दुनिया वालों से भी कई बातें हुई, लेकिन हम अलहदा रहे। अपने यहाँ पर भी आप जब आते हैं दैवी परिवार में, कई ऐसे आपको मिल जाएंगे जिससे कुछ हो सकता है, टकराव, झुकाव, कुछ हो जाए। इन अपने लक्ष्य को देख करके कि मुझे क्या बनना है, मनुष्य से देवता बनना है और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनना है, उस बातों को सामने रख करके, इन चीजों से पार जा करके, अपने लक्ष्य में बुद्धि टिका करके उस लक्ष्य को प्राप्त करना है, ना कि इन बातों में हमको आना है। मेरा विचार तो यही है, इनसे उपराम हो करके, याद की यात्रा में रह करके, अपने लक्ष्य को सामने रख करके अपने को आगे बढ़ाना है, ना कि इन चक्कर में, किसी चक्कर में, टक्कर में कहीं आना है। ओम शांति।
अगला प्रश्न है रुक्मणी बहन जी से। बहुत से लोगों ने पूछा है लौकिक के धर्म जो निभाने होते हैं, लौकिक में रहते हैं तो लौकिक के बहुत सारे धर्म होते हैं ना, कर्मकांड होते हैं जो करने पड़ते हैं, तो उसमें से एक धर्म है शादी पार्टीज में जाना। तो शादी पार्टीज में जाना, खान पान, तो इस प्रकार अगर हम शादी पार्टीज में नहीं जाते, वहाँ खाते पीते नहीं है, तो हमारे रिश्तेदार नाराज होते हैं, तो उनको हम कैसे समझाएं, कैसे मनाएं, क्या हमें शादी पार्टीज में जाना चाहिए, और अगर जाएं तो किस प्रकार से फिर खाने पीने का वहां पे प्रयोजन करें।
हम बाबा के बच्चे इस ज्ञान में चलते हैं तो ये बातें, परिस्थिति आती है और हम देखते हैं कि ब्राह्मण जीवन के ये चार तो नियम एकदम पक्के हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा और साथ में शुद्ध अन्न भी। क्योंकि बाबा कई बार हम बच्चों को कहते हैं यदि हमारा अन्न शुद्ध नहीं होगा तो मन की भी शुद्धि नहीं होगी, क्योंकि अन्न का प्रभाव मन के ऊपर बहुत बड़ा काम करता है। तो हम तो कहेंगे कि बाबा के बने हैं हम बच्चे, तो हमें अपने जीवन में ये सब धारणाएं अपनाना भी बहुत जरूरी है। पर कई बार देखते हैं कि परिवार में, समाज में, घर में कई लोग इसके ऊपर हमें बहुत पाबंदी करते हैं, कुछ बोलते हैं, कभी हंसी मजाक भी उड़ाते हैं कि सोचते हैं कि ये हमारे हाथ का नहीं खाते हैं, बाहर का नहीं खाते हैं। पर हम कहें कि इस चीज का हम नियम पालन करते हैं तो एक तो हमारे सामने ये परीक्षा का रूप आता है, जिसका मैं प्रैक्टिकल उदाहरण सुनाती हूँ कि हमारी लौकिक माताजी ज्ञान में चलती थी 60 साल पहले, और 50 साल पहले हम देखते थे एक परिवार में कभी एक बार पहली शादी हुई तो माताजी बहुत निश्चय बुद्धि थी, बाबा से और दादियों से यज्ञ से प्यार था। तो पहली शादी हुई तो मैं देखती थी, जब मेरी उम्र 10-12 साल की उम्र होगी तो माताजी अपना टिफिन दो टाइम का बना करके ले जाती थी सब्जी रोटी। अब परिवार उस समय भी 200-250 का था, अब सब सेकेंड नंबर थी, लौकिक पिताजी 5 भाई, अभी सभी उनको टिफिन देख के लोग हंसी करते थे। पर वो कहती थी कि देखो जिस धर्म को, जिस ज्ञान को मैंने अपनाए जीवन में, तो वहां के जो नियम है वो तो मुझे पालन करने पड़ेंगे जब कुछ भी हो जाए, क्योंकि जो जिस धर्म में जाता है तो उस धर्म का उसको नियम पालन करना होता ही है। तो मैं जिस संसार में जा रही, जिस धर्म में जाती हूँ, तो वहां का सबसे पहले वो कहती शुद्धन, पवित्रता की बात पीछे सुनाती थी। तो इसलिए हम देखते थे कि उस समय भी आज से 50 साल पहले वो इस कहें भोजन की शुद्धि, भले परिवार में शादी में गए, कोई पार्टी में गए, उस समय आज से 50 साल पहले पार्टियां नहीं थी, शादियां बहुत धूमधाम से होती थी, वो 3-3, 4-4 दिन। पर हम देखते थे कि बहुत इसके ऊपर भी विघ्न बातें आती थी, पर उनका हम निश्चय देखते थे। अब वो ये कहती मेरा ये धर्म है, मैंने जिस धर्म को, जिस संस्था से जुड़ी हूँ तो मुझे ये पालन करना ही है। कहते ना बाबा धर्म जाए पर क्या नहीं जाए, सिर नहीं जाए, नहीं ऐसे है ना। तो इसलिए हम बाबा के बच्चे बने हैं तो हमें इस चीज का बहुत अपने आप में निश्चय बुद्धि होकर के चलना है। यदि कोई कारण से हमको कुछ खाना पड़ता है तो आजकल तो मैं देखती हूँ कि कहीं पार्टियों में फल वगैरह होते हैं, ड्राई फ्रूट होते हैं, तो हम सूखी चीज ले लेवे, एक फल उठा के ले लेवे, तो उसके लिए मैं नहीं समझती आज के समय में इतना कोई जबरदस्ती करता होगा। और हमारे पास तो बहुत युक्तियां हैं, हम लोगों को सुना सकते हैं भाई आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है, आज ये हमारा परहेज है, क्योंकि हम लोग साकार बाबा के समय मुरलियां सुनते थे तो बाबा मुरलियों में कहते थे कि बच्चे तुम युक्ति से मुक्ति करो, कहते थे बाबा, सुनाते थे मुरली में, आज बोलो मेरा शुक्रवार का व्रत है, आज रविवार का व्रत है। तो उस समय ऐसा कोई फल और ड्राई फ्रूट का भी जमाना नहीं था, पर अब तो हम देखते हैं बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं तो आजकल तो बहुत कुछ साधन है, पर ये भी हमारी अपनी मन की कमजोरी होती है और मन में थोड़ा सा भी कहें जीव रस होता है ना, तो थोड़ा मन बुद्धि हमारी जीव चलायमान होती है तो हमारा मन भी डगमगाने लगता है। इसलिए हम बाबा के बच्चों को जितना हम इस बातों का नियम का ध्यान रखते हैं उतनी हमारी स्थिति और उतना हमारा बाबा के प्रति प्यार और हमारी स्थिति बनने लगती है। इसलिए हम बाबा के बच्चों को जितना खान पीन और जितना हम नियम पालन करते हैं तो इसलिए हमें इस ज्ञान की मंजिल पर चलना भी बहुत सहज और इजी हो जाता है। ठीक है, ओम शांति।
अगला प्रश्न हमारा आदरणीय मृत्युंजय भाई जी से है। एक भाई ने पूछा है कि मैं नाइट शिफ्ट्स भी करता हूँ, मॉर्निंग शिफ्ट करता हूँ, तो मेरी जॉब जो है शिफ्ट में रहती है.
जॉब
जो है से जो सर्विस करते हैं वो शिफ्ट में रहती है, कभी मॉर्निंग शिफ्ट, कभी नाइट शिफ्ट, कभी आफ्टरनून शिफ्ट. तो उसके कारण से मेरा पूरा साइकिल, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब रहता है. तो बहुत से भाई बहन ऐसे होते हैं, अपने आर्मी वाले भी हैं, तो वो कहते हैं कि हम पुरुषार्थ का समय हमको नहीं मिल पाता है, अमृत वेला उठ नहीं पाते हैं, ना कभी मुरली क्लास में टाइम पर पहुंच पाते हैं. तो ऐसे में हम अपने पुरुषार्थ को कैसे बढ़ाएं कि हमारा अमृत वेला भी मिस ना हो और आगे भी हम आगे बढ़ते रहें.
देखिए, अभी हिंदुस्तान में डे है, अमेरिका में नाइट है, और भी दूसरे कुछ देशों में अभी शाम है, कुछ देशों में सुबह है, परंतु ये तो ग्लोब में अलग अलग टाइम होगा ही होगा. ऐसे आपको हम लोग देश में विदेश में जाते हैं तो जिस टाइम के अनुसार हम लोग भी योग भी करते हैं, क्लास में भी जाते हैं, वो एडजस्ट हो जाते हैं. वहाँ के भाई बहन भी ऐसे ही होते. आपको समझो विदेश में है, अभी आपको उस समय में नौकरी कर रहे हैं, रात की टाइम है, सुबह आपको टाइम योग नहीं मिलता है. योग केवल एक घंटा हमारा निश्चित है हिंदुस्तान में, 4 बजे बैठ करके योग किया वही योग है. 10 बजे योग करे तो योग नहीं, शाम को योग करे तो योग नहीं, ऐसा नहीं है. वास्तव में योग तो बाबा को निरंतर योगी बन के रहना है, और समय सीमा हमारा अनुकूल के हिसाब से सेट किया है, सबके कॉमन बेनिफिट के हिसाब से. सुबह हमारा हिंदुस्तान में, अमेरिका में, हिंदुस्तान में 4 बजे तो नहीं आ सकते, उनको उनका अपना अमृत वेला अलग है, और लंदन में अपना अमृत वेला अलग है, ऑस्ट्रेलिया में अपना अमृत वेला अलग है, और कनाडा में अपना अमृत वेला अलग है. इसके लिए अमृत वेला का
ये भाई साहब ये विदेश वाले
नहीं, नहीं मैं बताता हूँ. इसके लिए आपने को अपने समय के अनुसार सेट करो. हर व्यक्ति हमने सुबह रात को ड्यूटी करके हम सुबह अमृत वेले जाएंगे ये तो असंभव है, प्रैक्टिकल नहीं तो नौकरी छोड़ना पड़ेगा, नौकरी छोड़ नहीं सकते. इसके लिए अमृत वेले की भाव जो है, जो हमारा दृष्टि से ये तो अलग अलग है, परंतु आप उस समय में मिस करेंगे तो चिंता नहीं करो, आराम करके दोबारा क्लास में जाओ और नाप के अनुकूल के हिसाब से. क्योंकि मिलिट्री में सेवा करने वालों को रात की ड्यूटी देना पड़ेगा, सिक्योरिटी देना पड़ेगा, सिक्योरिटी वाला जो ड्यूटी दे रहा है रात को, और अमृत वेला उनको तो रात में जहाँ बैठा है वही करेगा. अपने ही मधुबन निवासी लोग ड्यूटी कर रहे तो उनका अमृत वेला क्लास में जा करके बैठ नहीं सकता है, जहाँ बैठा है वही है, उनका अमृत वेला करना पड़ता है. इसके लिए अमृत वेला के भाव जो है एक उसका व्यापक मीनिंग है, उस दृष्टि से आप निश्चिंत होकर के अपने समय को सेट करके योग करना, बाबा को याद करना, मुरली. और दूसरा आजकल साधन बहुत है, मुरली क्लास में बैठ नहीं आ सकता है तो आपको मोबाइल में मुरली है. ऐसा नहीं है मोबाइल है मुरली इसके लिए आलस्य होकर के क्लास में नहीं जाओ, ये नहीं होना चाहिए. परंतु आपको दूर में यात्रा में है, ट्रेन में है, फ्लाइट में है, वो आपका ये यात्रा कर रहा है, उस टाइम में मुरली मिस नहीं करे, उसके लिए आपके पास विधि है. आजकल मोबाइल मुरली भी है, इंटरनेट में भी मुरली आता है, और भी कुछ पुरुषार्थ के लिए टिप्स भी आता है, बहुत कुछ है आजकल. पीस ऑफ माइंड में भी आ जाता है, सार साधन है. पहले जमाना था वो अलग बात थी, एक ही मुरली के सिवाय दूसरे साधन नहीं था. वो भी मुरली पोस्ट में आता था, कभी हफ्ते तक मुरली नहीं मिलता था. अभी तो इन एडवांस मुरली मिल रहा है, क्लास में आप जाने से पहले एडवांस मुरली मिल रहा है. इसके लिए पुरुषार्थ के लिए बहुत साधन है, अभी मिस नहीं करना चाहिए. खुद को इंटरेस्ट होना चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. इंटरेस्ट होगा तो कैसे भी करके मेकअप करेंगे आप. ओके, ओम शांति.
इसी में ही आगे कंटिन्यूएशन में है भाई साहब, आत्म प्रकाश भाई जी से पूछना चाहते हैं कि बहुत बार नौकरी करते करते हमें नौकरी छोड़कर बाबा की सेवा करने का संकल्प आता है कि हम सब कुछ छोड़ दें और ईश्वरीय सेवा ही करें, परंतु इससे हमारे परिवार का क्या होगा और हमारी फिर जो गवर्नमेंट जॉब है अगर तो पेंशन भी नहीं बनेगी. तो ऐसे में हम असमंजस में आ जाते हैं कि नौकरी असमंजस कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि नौकरी छोड़े या क्या करें, क्योंकि इच्छा होती है कि अभी हमें संसार से वैराग्य आता है और हमें घर संसार में नहीं रहना है, सब कुछ छोड़ करके बाबा की सेवा करना चाहते हैं, तो हम नौकरी छोड़ दें घर परिवार छोड़ के यहाँ आ जाएं या वो करते रहें?
मेरे दृष्टि से दोनों नहीं छोड़ना है, ना परिवार छोड़ना ना नौकरी छोड़ना।
देखिए, कभी भी नौकरी छोड़ने का भले ख्याल आता है, वैराग आता है कि क्या है, बिलाज सामने खड़ा है और ये दुनिया अब जाने वाली है, टाइम थोड़ा है, हमको पूरा पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए, ख्याल तो आता है। परंतु ये देखें कि आपका परिवार है, सदस्य है, मेंबर है आपके, उनकी आपने पैदा किया, पालना करनी पड़ेगी, और तो कोई करेगा नहीं। अगर हम नौकरी छोड़ देंगे तो उनकी पालना कैसे होगी? नंबर दो, ये देखिए, हम जब इस ज्ञान व्याम आए थे तो हम इंजीनियरिंग में पढ़ते थे, हमें भी बड़ा वैराग आया कि क्या पढ़ाई करनी है नहीं करनी है। बाबा ने भी कहा कि तुम्हें ये पढ़ाई तुम्हारे काम आने वाली नहीं है, भगवान ने खुद कहा, शिव बाबा ने ब्रह्मात्म द्वारा, कि बच्चे पढ़ाई तुम पढ़ रहे हो, इंजीनियरिंग की काम नहीं आएगी। और वैराग आ गया, फिर बाबा ने कहा नहीं, बच्चे अपने परिवार को और अपने स्टूडेंट्स को ज्ञान दो, तो वो किया। परंतु हम ये कहते हैं कि जब तक आप जो सेवा कर रहे हैं, इतने आप इतने वैल्यूएबल बन जाए कि आपके बगैर वो सेवा कोई और भी कर ना सके, या आप इतने आप में वो आ जाए, यानी योग्यता हो कि मेरा ये नौकरी छोड़ना बहुत जरूरी है, तब तक कभी भी नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए, ना परिवार छोड़ना चाहिए। अब तो वो जमाना गया जबकि बाबा ने हमको कहा था, बच्चे कोई दरकार नहीं जॉब करने की, हम अगर हम जॉब करते तभी हम चीफ इंजीनियर रिटायर होते तो हमें शायद पेंशन भी बहुत बड़ी मिलती। लेकिन बाबा ने तब कहा कि बच्चे तुम्हें कोई जॉब करने की दरकार नहीं और इस सेवा में लग जाओ। इसी प्रकार से जब इतना आप में हो जाए कि आपके सेवा के बगैर कोई रुक रहा है कोई चीज, तब तो ठीक है। परंतु जब तक आपका परिवार है, नहीं तो इससे डिसर्विस होती है। अगर आपने नौकरी छोड़ दी, घर बार छोड़ दिया, ये सेवा में लग गए ना, वहाँ वो खुद वो भी परेशान होंगे, आप भी परेशान होंगे, बहुत डिफिकल्टी आएगी। नौकरी मत छोड़ो, घर परिवार मत छोड़ो, सब ऐसा बनो कि सारा कार्य करते हुए भी फिर भी आप सेवा में बिजी रहे। 24 आवर्स है, बहुत टाइम है। और सबसे ज्यादा तो आप देखो, बाबा ने एक मुरली में कहा था, सबसे बड़ी सेवा कौन सी है, सबसे बड़ा पुण्य का काम कौन सा है? बाबा ने ये कहा, बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, सबसे बड़ी सेवा तो यही है। वो तो कहीं भी कभी भी कहीं भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। इसमें आप पुरुषार्थ ज्यादा करते जाएंगे करते जाएंगे, टाइम वो भी आ जाएगा। अगर आपकी इच्छा है कि मैं पूरा इसमें लग जाऊं, वो भी टाइम आ जाएगा अपने आप ड्रामा अनुसार, कि आप पूरा इस सेवा में लग जाएंगे और परिवार भी सहयोगी बन जाएगा, सब सहयोगी बन जाएगा। बहुत हमने एग्जाम्पल्स देखे हैं, उनके बच्चे बड़े हो गए, कमाने लग गए और वो फिर वो सेवा में लग गए, अपना वो सेवा कर रहे। तो आप देखो, ये डबल जंजीर है, परिवार और हम एक डबल जंजीर है। आपने जंजीर छोड़ दी लेकिन परिवार ने आपको पकड़ा हुआ है, तो आपको फिर ख्याल आएगा, फिर आप फिर आपको खींच पड़ेगी। जैसे सन्यासी नहीं, बाबा सन्यासी घर बार छोड़ के आते हैं और फिर उनको खींच पड़ती घर चले जाती है, तो ऐसा नहीं करना है, ना हमने परिवार छोड़ना है। जो सेवा कर रहे हैं उसको सेवा, हाँ ये अवश्य करो, कम से कम ऐसा सिस्टम बनाओ कि कम से कम आपको उस नौकरी में टाइम देना पड़े। ये ऐसा सिस्टम भी हो जाता है कहीं, पर चलो थोड़ा कम पे मिल रही है, कुछ मिल रही है, चलो हर्जा नहीं है, हम कम से कम समय उसमें लगाएं और ज्यादा से ज्यादा हम याद और सेवा में समय लगाएं। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा लोग करते भी है। ओम शांति।
इसके ऊपर एक बात मैं सुनाती हूँ, कलकत्ते की बात है। सेंटर पर दो भाई थे, 38 साल पहले की बात होगी। तो एक भाई नेवी में नौकरी करते थे और एक सरकारी फ्लिस कंपनी में काम करता था। तो एक दिन दोनों कुमार परदादी के सामने आए, तो जो नेवी में करता था उसने बोला कि दीदी मैं नौकरी छोड़ दूं। तो बड़ी दीदी ने उसको बोला, भाई नौकरी नहीं छोड़। पर फिर भी वो भाई थोड़ा अपने धुन का मन का था, और नौकरी छोड़ के बैठ गया। अब दूसरा भाई जो सरकारी नौकरी करता था तो उसने भी बोला कि मैं नौकरी छोड़ दूं। तो दीदी ने उसको, बड़ी दीदी ने कहा कि देखो उस समय उसकी उम्र 30-32 साल होगी सर, बोला तुम जवान होकर के नौकरी छोड़ के बैठ जाएगा सारा दिन क्या करेगा, तो तुम जवान को मैं बैठ के खाना खिलाऊंगी क्या, तुम अभी नौकरी करो और नौकरी करके कमाओ और अपनी माँ, विडो माता जी थी उसकी, माँ को भी देखो, एक बहन थी छोटी उसको भी देखो और बाबा के घर में सेवा करो, डबल सेवा तुमको करनी, नौकरी बिल्कुल छोड़नी नहीं है। तो इसलिए हम देखते हैं कि कईयों के मन में संकल्प आते हैं नौकरी छोड़ने के, नहीं करेंगे, बाबा के घर में सेवा करेंगे, पर हम ये कहते हैं कि कई आत्माओं के संस्कार अनुसार, सेवा अनुसार, बड़े जो बोलते हैं, बड़े जो देखते हैं, उस अनुसार उनको सेवा दी जाती है। और सचमुच में जिस भाई को बोला कि नहीं छोड़ो नौकरी, छोड़ दी उसने, छोड़ करके बैठा है, तो अभी भी हम देखते उसकी मन की स्थिति और शरीर की स्थिति अभी भी डावाडोल है, क्योंकि बड़ों ने कहा फिर भी बाप को माना नहीं, नौकरी छोड़ के बैठ गया। उस समय तो उसकी 60-65 हजार नेवी में थी। तो इसलिए ये भी हमारी अपने संस्कार अनुसार, हमारी स्थिति के अनुसार, यदि बड़े कोई राय सलाह देते हैं नौकरी छोड़ो नहीं छोड़ो, सर्विस करो नहीं सर्विस करो, तो भी हमारी स्थिति को देखकर बड़े जो राय देते हैं उस अनुसार ही हमें चलना चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रुक्मणी दीदी जी से। ही अगला प्रश्न है, कुछ भाई बहन पूछ रहे हैं कि प्याज और लहसुन छोड़ना क्यों आवश्यक है, क्या जरूरी है प्याज लहसुन छोड़ना, और इन्हें छोड़े बिना क्या हम आध्यात्मिक मार्ग पर नहीं चल सकते हैं। फिर कुछ भाई बहन ये भी कहते हैं कि हमारे घर में नॉनवेज बनता है, हमें बनाना भी पड़ता है क्योंकि हमारे बच्चे और युगल खाते हैं, तो हम बाबा का भोग लगा ही नहीं सकते हैं क्योंकि जिस घर में नॉनवेज आता है वहाँ बाबा का भोग कैसे लग सकता है, तो हम क्या करें, हमारे कहने पर भी वो मानते नहीं है, तो हम क्या बाबा का भोग लगा सकते हैं या नहीं।
बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि बताए ज्ञान मार्ग में एक एक बात, एक एक सब्जेक्ट, एक एक कदम बहुत बाबा की और बड़ों की श्रीमत अनुसार हम चलते हैं तो बड़ों की सदा ब्लेसिंग मिलती है। और बताए मैं इतना साल कलकत्ते में रही, बंगाल में रही, तो बंगाल की धरनी तो इस चीज में बहुत सबसे आगे है। अब सब जगह ऐसे तांत्रिक चीज है तो, पर बंगाल सबसे आगे है मैं समझती हूँ, क्योंकि आज से 50 साल पहले बंगाल की धरनी पर ये तांत्रिक चीज छोड़ना बहुत डिफिकल्ट बात थी। और बंगाल में क्या, यदि स्त्री माता यदि मछली छोड़ दी तो उसका कहेंगे उसका सुहाग चला गया, ऐसा वहाँ लोगों की मान्यता है, तो इसलिए उनको खाना बहुत जरूरी होता है माताओं को, ये तो सुहाग चला जाएगा, ऐसे लोग उनको डराते हैं बोलते हैं। तो हम जब ज्ञान में चलते थे तो दादी के आगे प्रश्न करते थे, पर हम लोग सुनते तो थे, और कई बार कई सेंटरों पर जाते थे। तो एक बार की बात है, साकार बाबा के समय की बात है, कलकत्ते में 1967 में प्रदर्शनी हुई थी, तो उस प्रदर्शनी से एक मारवाड़ी भाई निकले, एक बंगाली भाई निकला, तो बंगाली भाई को तो बहुत मेहनत लगी, उसको कम से कम 6 मास 1 साल के करीब हो गया मछली छोड़ना, तामसिक भोजन छोड़ना। और जो मारवाड़ी भाई थे वो 2-2.5 मास के हुए ज्ञान में, उन्होंने बड़ी दीदी को बोला मुझे मधुबन जाना है, तो दादी ने उनको कहा कि अभी आप तो 2-2.5 मास के बच्चे कैसे जाएंगे, बोला नहीं मुझे जाना है, मैंने जो नियम है वो मुख्य पालन कर लिया और भोजन तो मैं शुद्ध करता हूँ, प्याज लहसुन तक भी नहीं खाता हूँ। तो बड़ी दीदी ने पत्र लिखा साकार बाबा को, तो बाबा ने कहा कि बच्चे को भले लेके आओ। तो जब साकार बाबा के सामने वो भाई गए तो बाबा ने बहुत अच्छी बात बाबा की सुनाती हूँ। और उस प्रदर्शनी में उस समय 1 लाख के करीब खर्च हुआ। तो बाबा ने उन भाई को कहा, जो मारवाड़ी भाई थे, तो भाई को कहा कि बच्चे आपको मालूम है आप 1 लाख जब पैदा हुए जब बाबा ने 1 लाख खर्च किया। तो भाई तो नए थे, अब बेचारे को 2-2.5 मास तो बाबा के बच्चों को इतना तो समझ में नहीं आया। फिर बाबा ने उसी बात को फिर 2 बार और रिपीट किया कि बच्चे आपको मालूम है आप 1 लाख जब पैदा हुए जब बाबा ने 1 लाख खर्च किया। तो भाई ने कहा कि बाबा मुझे क्या करना है। तो बाबा ने कहा उन भाई को कि आपको बाबा का इतना ऋण चुकाना होगा। उसके बाद तो बाबा के वो बच्चे बन गए। अब जो दूसरे भाई थे उनको कम से कम 1 साल लग गया। 1 साल के बाद साकार बाबा से मिलने गए तो बाबा ने उनको कहा कि बच्चे आपको सफेद आलू छोड़ने में मेहनत हुई। अब सफेद आलू के हम लोग भी पहले नहीं, क्योंकि हम बचपन से ज्ञान में चले सफेद आलू। सफेद आलू किसको, कोई है क्या कोई बंगाली?
अंडा अंडा
अंडा। तो बाबा ने उनको कहा कि बच्चे मालूम आपको सफेद आलू छोड़ने में मेहनत हुई। तो पहले तो खुद ही नहीं समझे, तो बंगाल में अंडा को डीम कहते हैं, कोई होंगे बंगाली, डीम डीम।
अच्छा,
ऐसे हमने लौकिक में कभी प्याज लहसुन खाया नहीं, कभी जानते नहीं, अभी तक भी लौकिक में नहीं चलता। तो ऐसे करके जब वो साकार बाबा से मिले तो बाबा ने उनको प्रश्न किया कि बच्चे वो सफेद आलू छोड़ा है। तो पहले तो बेचारे समझे नहीं, फिर थोड़ा समझा, स्पष्टीकरण किया तो बोला बाबा भी छोड़ दिया। कि बाबा ने कहा कि बच्चे आपको इतना समय लगा सोचने में, बाबा ने कहा और उसी समय आपको छोड़ देना चाहिए। तो साकार बाबा ने कहा कि बंगाल की धरनी तो कल्लाटी जमीन है, बाबा समझता बच्चों को मेहनत होती है। तो ऐसे करके हमने उस समय देखा कि लोगों को छोड़ना मुश्किल है, पर अभी हम देखते हैं कि समय के अनुसार, अभी तो बंगाल के भाई बहन जो भी मधुबन में आते सेंट्रों में आते हैं, अभी तो मैं समझती महीना 15-20 दिन में ये तामसिक भोजन छोड़ देते, अभी मेहनत नहीं लगती है। उसके बाद हम आपको बता, एक बार कलकत्ते की बात है, एक बार कोई युगल थे, अब बंगाल में क्या सब जगह ऐसे तो बच्चे प्यारे होते हैं, एक हो या दो हो, तो एक भाई मेरे पीछे पड़ गया, कहता है कि आप दीदी हमारी युगल को बोलो और बच्चे को रोज डेली डीम खिलाए, अंडा खिलाए, और नहीं तो बच्चा मेरा दुर्बल हो जाएगा। तो मैंने भाई को कहा कि देखो भैया हमारा तो ये नियम है नहीं, और हम किसी को कह नहीं सकते कि आप ये तामसिक भोजन खिलाओ खिलाओ। बोला दुर्बल हो जाएगा बच्चा, उसको मानसिक शक्ति कमजोर हो जाएगी। तो मैंने बोला देखो भाई मैं तो बचपन से ज्ञान में चली और हमने तो कभी प्याज लहसुन भी कभी जाना नहीं कैसा होता है, तो हम तो कहीं कमजोर लगते नहीं है, पर उसकी जगह आप दूध पिलाओ 1/2 किलो, 1 पाव, 1 किलो फल खिलाओ, इतने फल है, वैरायटी फल है, तो क्यों आपका बच्चा कमजोर होगा। तो तामसिक भोजन ना खिला के आपको फल फूल ड्राई फ्रूट खिलाओ तो बच्चा आपका ऑटोमेटिकली मजबूत बलवान बन जाएगा। तो इसलिए जहाँ जिस घर में तामसिक भोजन बनता है, और उसके लिए भी बाबा कई बार ये भी हम बच्चों को सुनाते हैं कि बनाने वाले के ऊपर भी थोड़ा सूक्ष्म में बोझ चढ़ता है। यदि हमको कोई कारण बहुत, कभी कोई के पति बहुत बोलते हैं, गुस्सा करते, क्रोध करते, तो बना के दो वो साक्षी हो करके, पर फिर उस स्थान पर बाबा का भोग नहीं लग सकता है, क्योंकि फिर भी वातावरण में थोड़ा तो अशुद्धता आती है। इसलिए हम इस चीज का संकल्प करें कि बाबा का भोग होता है बहुत साफ स्वच्छ स्थान पर, तभी बाबा का भोग बाबा स्वीकार करता है। इसलिए तामसिक भोजन से ना हमारी कोई शुद्धि होती है, ना ताकत आती है, और ही हम तो कहेंगे मन दुर्बल और शरीर भी कमजोर हो जाता है। ठीक है,
कमजोर के आजकल बीमारी हो जाता है, जितनी तामसिक आहार खाएंगे ना उतना ज्यादा बीमार है। और दूसरा, आप भोग लगाते हैं ना, बाबा का भोग तो बड़ी बात है, डायरेक्ट है, परंतु देवताओं को भी मूर्तियों को भी भोग नहीं लगाते हैं उसे, परंतु लगाते हैं मूर्तियों को, नहीं लगाते तो ऐसी चीज क्यों, प्रश्न भी नहीं उठना चाहिए। लहसुन प्याज भी नहीं लगाते हैं, है? इसके लिए ये प्रश्न अपने आप को समझ रहना चाहिए। ज्यादा क्विकली, ओके, थैंक यू।
वैसे तो आजकल बाहर की दुनिया के लोग अब धीरे धीरे वेगन होते जा रहे हैं, आप सब जानते हैं इस बात को कि विदेश से नॉनवेज भारत में आया है, लेकिन विदेशी अब परिवर्तित हो रहे हैं धीरे धीरे करके, वो लोग नॉनवेज छोड़ते जा रहे हैं और इंडियंस जो हैं वो वेजिटेरियन से नॉन वेजिटेरियन होते जा रहे हैं, उल्टा हो रहा है। हम लोग एक्चुअली बाहर की चीजों को अपनाते जा रहे हैं और बाहर के लोग हमारी जो पुरानी प्राचीन सभ्यता है, हमारा खान पान, उसको अपनाते जा रहे हैं, तो हम अपनी संस्कृति से दूर हो रहे हैं। बाहर के लोग तो भारत की संस्कृति को ज्यादा इम्पोर्टेंस देने लगे हैं।
हमारा कृष्ण दूध पी करके इतने कंसों को मारा मारा है ना, कृष्ण दूध पी के कितने कंसों को मारा, अभी हाथी घोड़े गदा खा करके लोग कितनों को मारा बताओ, अच्छे लोगों को मार दिया,
मक्खन खा के
दूध पी करके। पॉल्यूशन भी क्रिएट करता है। ऐसे तो बहुत सारे साइंटिफिकल रीजंस हैं जिसकी वजह से अभी आजकल नॉन वेजिटेरियन इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, पर उसके बारे में हमारे पास चर्चा करने का अभी समय नहीं है। एक आखिरी प्रश्न हम बस लेना चाहते हैं, आदरणीय मृत्युंजय भाई जी से पूछना चाहते हैं, उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। कुछ भाई बहन पूछ रहे हैं कि जो सच्ची कामयाबी क्या है,
सच्ची
कामयाबी, ट्रू सक्सेस, आध्यात्मिक रीति से भी और लौकिक रीति से भी सच्ची कामयाबी क्या है।
कामयाबी सबसे पहले तो अपने मन में संतुष्ट आता है ना, वो बड़ी कामयाबी है, और साथ साथ में आपका अनुभव होता है सीधा, एक लाइट एंड माइट का स्थिति अनुभव करते, परिस्थिति आपके ऊपर हावी नहीं होगा परंतु परिस्थिति के ऊपर आप रूल करेंगे, ये कामयाबी है। दूसरा, यश आ जाएगा आपको, पैसा आ जाएगा, वो सबसे बड़ी बात नहीं है, परंतु अपने आप में सदा लाइट होकर के, साक्षी होकर के रहना, और आपका फील होता है हर कदम में, हर परिस्थिति में, हर बात में, बाबा हमारा साथी है। जैसे हमारा दादी कहते ना, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, परिश्ता बाबा, शुक्रिया बाबा, वो दिल से निकलता है, अपने बाबा ने हमारे को अपना गोद में लिया है, हम गोद में बैठ गए, बस इतना ही है हमारा पुरुषार्थ। इसके लिए वो संतुष्टता बाप समान बनने में और संतुष्टता आध्यात्मिक जीवन में भी ऑटोमेटिकली रहता है, साथ में आप सदा लाइट रहेगा, खुशी रहेगा। आजकल मैं देखता हूँ बड़े बड़े लोग, साहूकार लोग, धनवान लोग भी खुशी में नहीं रहते, स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, कुछ तो टेंशन में डिप्रेशन में जाकर के सुसाइड करते हैं। रिसेंटली आपने देखा एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया, क्यों कर दिया,
कैफे कॉफी डे का चेयरमैन था, उसने सुसाइड कर लिया।
करीब उनको कम से कम 30,000 करोड़ का प्रॉपर्टी है, परंतु उनके अंदर कोई ना कोई विकर्म कहो, कुकर्म कहो, अशुद्धता कहो, वो अपवित्रता कहो, उसको मन को ठिकाना नहीं देते। बहुत लोग हैं, मैंने हिंदुस्तान में भी बहुत लोग हैं ऐसे, विदेश में भी ऐसे लोग हैं। इसके लिए सबसे बड़ा, आप देखो अपने परिवार में, हमारा बहने बेफिक्र बादशाह है, कितनी बहने हमारे समर्पित 30,000 भाई बहने हैं, विशेष करके बहने हैं, उनके अंदर कई लोगों को बैंक बैलेंस नहीं है, बैंक अकाउंट ही नहीं है, आश्रम के अकाउंट होगा, सेंटर के अकाउंट होगा, परंतु जितना वो संतुष्ट है दूसरा कोई नहीं मैंने देखा, संतुष्ट है ना, और जितना सेफ एंड सिक्योर्ड है दूसरा कोई नहीं है। बहुत लोगों के पास धन है, दौलत है, सब कुछ है, उनके अंदर सेफ्टी भी नहीं, सिक्योरिटी भी नहीं, और हमारा बहन इतने सेफ एंड सिक्योरिटी है। क्यों? बाबा का वरदहस्त उनके पास, श्रीमत उनके ऊपर वरदहस्त है, उनका त्याग और तपस्या सबसे बड़ी बात है। हिंदुस्तान में महात्मा गांधी जी ने भी त्याग किया रिसेंट के बाद, उनका त्याग आज भी याद करते हैं। उस समय भी शाहकार लोग थे, धनवान वाले थे, बहुत धनाढ्य लोग थे, उनको कोई याद ही नहीं करता है। हिस्ट्री में, इतिहास में भी देखो, बहुत लोग बड़े बड़े राजा महाराजा और धनवान थे, उनको कोई याद नहीं करते। परंतु जिन्होंने त्याग किया, जिन्होंने तपस्या किया, बुद्ध ने त्याग किया, राजधानी छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, संपत्ति छोड़ दिया, तपस्या किया, आज सारी दुनिया में उसको याद करते हैं। मैंने अभी अभी चाइना में गए थे, 220 फीट हाइट का बुद्ध का मूर्ति बनाए। हमने देखा भारत में बुद्ध ने सारा ज्ञान दिया, चाइना वाला ने उसका मूर्ति बनाया। ऐसे बहुत देश है विदेशों में, त्याग की बलिदान की यादगार है। ब्रह्मा बाबा ने त्याग किया और आज सारे विश्व उसको पिता महा कहते हैं हम लोग। क्यों? मानवता का पिता महा, धर्म पिता अलग है, धर्म की स्थापना करने वाले धर्म पिता अलग है। ब्रह्मा बाबा साधारण है, साधारण व्यक्ति होते हुए मानवता का पिता बन गए, मानवता का जन्म उन्होंने दिया। मानवता क्या चीज है उसने त्याग तपस्या के माध्यम द्वारा सीखा है। इसके लिए संतुष्टता एक बड़ी चीज है, त्याग बड़ी चीज है, तपस्या बड़ी चीज है, और पवित्रता बड़ी चीज है, उसकी सामने दूसरी सब छोटी छोटी चीज है। ओके, ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बहुत छोटे।
बोलिए बोलिए। ऐसी बात है, हर एक व्यक्ति का वो लागू नहीं होता है। अभी बच्चा पैदा हुआ 2 साल हो गया, उसके तो अभी 50 साल उनके लिए संगम ही एक्सटेंड नहीं कर सकते। अभी सूर्यास्त हो रहा है, उसी टाइम में उनका टाइम आ गया, उस समय उनके लिए तो सूर्यास्तम को रोक नहीं सकते, आगे बढ़ा दो, सूर्य को रोक नहीं सकते। ऐसे ही तपस्या अलग चीज है। विक्रम आपको क्या पता है, बाबा ने 2 दिन में भी भस्म कर सकते, 10 दिन में भी कर सकते, 10 साल में भी कर सकते है। पहले तो आपका दृढ़ विश्वास चाहिए और योग अच्छा चाहिए, त्याग चाहिए, तो ऑटोमेटिकली बाबा भस्म करेगा। इट इज हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज नॉट माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। मैं 10 साल तक भी भस्म नहीं कर सकता हूँ, 20 साल तक भी नहीं कर सकते, 50 साल तक भी नहीं कर सकते, बाबा कहे तो 1 मिनट में भी कर सकते। इसके लिए आपका विश्वास होना चाहिए बाबा में, बाबा अपने आप करेंगे, निश्चिंत रहो। डोंट एक्सटेंड संगम योग।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारी जो भी वरिष्ठ यहाँ पे आई, आदरणीय रुक्मणी दीदी, मृत्युंजय भाई और आत्म प्रकाश भाई जी का, हम सबका बहुत ज्ञान वर्धन किया, सबको मजा आया, सबके प्रश्नों के जवाब मिले। 2 मिनट हम सभी शिव बाबा की याद में।
ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है।